तो वतन में रहता,
तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल सही ना लगता,
तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल सही ना लगता।
ओम शांति। बाबा की बगिया के रूहानी गुलाब, भ्राता मोहन सिंगल भाई जी हमारे बीच में आए हैं, जिनका हम एक हाथ की ताली से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप 1962 में विद्यार्थी काल से ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आए। अपने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1963 में मास्टर डिग्री प्राप्त की, 1967 में एमटेक की मास्टर डिग्री प्राप्त की। आप इंजीनियरिंग की शिक्षा लेने के बाद ओएनजीसी में ट्रेनिंग सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रहे। भारत के लगभग 20 शहरों में आपने स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी का भी निर्माण किया है। भारत में आसाम, गुजरात, बिहार आदि में अनेक सेवा केंद्र खोलने के आप निमित्त बने। आपने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी कार्य किया है। भारत केंद्र सरकार ने मानव संसाधन मंत्री जी के हाथों पर्यावरण श्री की उपाधि आपको दी है। आपने डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स डेवलप किया, अनेक अभियानों का संचालन किया। आपने यूएसए तथा यूके में भी इंटरनेशनल अवार्ड प्राप्त किए हैं। आपको 2013 में ग्रीन आइडल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। साइंटिस्ट व इंजीनियरिंग विंग में आप चेयरपर्सन भी है, हमारे ज्ञान सरोवर एकेडमी के कोऑर्डिनेटर भी है। विंग्स ऑफिस में 18 विंग्स की गतिविधियों को सुचारू रूप से देखते हैं। आपको साकार मम्मा बाबा की पालना लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साकार बाबा जब अव्यक्त हुए, उस दिन साकार ब्रह्मा बाबा के माध्यम से सुनाई गई अंतिम मुरली क्लास के सौभाग्यशाली भाई बहनों में से आप एक हैं। तो वह अनुभव भी हम सुनेंगे एवं बाबा के अंतिम वरदानी बोल निराकारी निरहंकारी और निर्विकारी भव को हम स्वरूप में कैसे लाए वो भी हम सुनेंगे। तो आज आपका टॉपिक है रिटर्न जर्नी, हम सभी आपके श्रीमुख से सुनेंगे। आदरणीय भ्राता जी मोहन भाई जी।
ओम शांति। अभी तो आपकी बुद्धि में कौन सी रिटर्न जर्नी है, ये भट्टी कब खत्म होगी, उसके बाद की रिटर्न जर्नी अपनी अपनी जगह की, या बड़ी वाली रिटर्न जर्नी? बड़ी वाली, यहीं से ही जाएंगे बड़ी वाली, या अपनी अपनी जगह से जाएंगे? वो तो कोई कह ही नहीं सकता, अगले क्षण का भी मालूम नहीं होता है। और वैसे ये कहना भी पूरा यथार्थ नहीं है कि अगले क्षण का भी जानना ये पॉसिबल नहीं है। लौकिक दुनिया में तो बोलते हैं, लेकिन हम बीकेस की ब्यूटी यही है कि हमें अपने अंतिम समय का आभास हो जाता है, क्योंकि हम सब ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखते हुए चल रहे हैं। और बाबा भी कहते हैं, ब्रह्मचारी तो आप बन गए, पवित्र तो हो गए, जब से ज्ञान में आए ब्रह्मचारी तो हो गए, अब क्या बनना है? ब्रह्माचारी। और जब ब्रह्माचारी बन रहे हैं तो ब्रह्मा बाबा की तरह अंतिम समय का भी आभास होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि अंतिम समय तो सारी दुनिया का ही आना है। जिसने भी इस शरीर में जन्म लिया है उसको शरीर छोड़ना भी है, जाना तो सबको ही है, लेकिन ब्यूटी तब है, नवीनता तब है जब दुनिया वालों की तरह हम ना जाएं, लेकिन हमें पहले से ही आभास हो जाए कि हाँ बाबा, अब मेरा इस शरीर से हिसाब किताब पूरा हुआ, अब हम आपके पास आ रहे हैं। ब्रह्मा बाबा को भी ये आभास हो गया था। वैसे तो बाबा मम्मा के साथ रहने का सौभाग्य मिला, बाबा के साथ तो काफी साल, लगभग 7 साल बीच बीच में आने का, स्टूडेंट पीरियड से जॉब में भी, लेकिन सबसे बड़ा सौभाग्य, उससे भी बड़ा सौभाग्य कौन सा था? ब्रह्मा बाबा के साथ रहने का सौभाग्य मिला, ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन इससे भी बड़ा सौभाग्य कौन सा हो सकता है? क्योंकि अंतिम दिन जब बाबा ने शरीर छोड़ा 18 जनवरी को, तो 17 और 18 जनवरी को, यद्यपि हम बहुत दूर थे, आसाम में थे इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ने के बाद, आसाम में पोस्टिंग हुआ था ONGC में, और बहुत दूर थे, लेकिन अंतिम 2 दिन बाबा ने अपने पास यहाँ बुला लिया, और 17 जनवरी की सुबह हम यहाँ पर आ गए, और 17 और 18 जनवरी को बाबा की संपूर्ण अव्यक्त कर्मातीत फरिश्ता स्वरूप अवस्था देखने का इन आँखों से सौभाग्य मिला। इससे बड़ा कोई और सौभाग्य हो सकता है क्या? क्योंकि एक ही आत्मा अभी तक कर्मातीत बनी है, ब्रह्मा बाबा, और उसको देखने का, उनसे बात करने का अंतिम दो दिन सौभाग्य मिले तो ये साधारण बात तो नहीं है। तो इसीलिए हम अपने को उस दृष्टिकोण से भी बहुत बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। और अभी तो आपने, मैंने सुना, जैसे बहन जी से भी अभी आपने मम्मा की बहुत बहुत बातें सुनी मम्मा की बातें। हाँ, नेक्स्ट टू बाबा तो मम्मा ही है, तो बहुत बातें तो सुन ली, लेकिन शायद एक बात न सुनी हो। तो मैं उस बात से थोड़ा शुरू करता हूँ, क्योंकि मम्मा का मास भी चल रहा है और हो सकता है कि आपने ये बात न सुनी हो, क्योंकि अक्सर करके ये बात बहुतों ने नहीं सुनी। हमें सौभाग्य मिला ये बात का। तो मम्मा ने जब शरीर छोड़ा, अभी तो याद है ना, ताजा ताजा, किस दिन छोड़ा था? 24 जून 1965। तो मम्मा जब शरीर छोड़ के ऊपर गए सूक्ष्म वतन, तो वहाँ पर बाबा और शिव बाबा और सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा, वो दोनों थे। मम्मा वहाँ गई सूक्ष्म वतन में, तो मम्मा ने से बाबा ने पूछा, मम्मा आप कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आई हो? तो मम्मा ने थोड़ा सोचा, फिर मम्मा ने कहा कि नहीं बाबा, मैंने तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव नहीं किया। अच्छा बच्ची, अगर कर्मातीत स्थिति का अनुभव नहीं किया तो अभी तो परम धाम जा नहीं सकती, क्योंकि परम धाम वही आत्मा जा सकती है जिसने कर्मातीत स्थिति का अनुभव किया हो। और अभी तुमने चूंकि कर्मातीत स्थिति का अनुभव नहीं किया, इसीलिए परम धाम तुम नहीं जा सकते। तो मामा ने सुना, फिर बाबा ने कहा, जाओ बच्ची, अभी भी चांस है, क्योंकि तुम्हारा शरीर अभी हिस्ट्री हॉल में रखा है, वो जो हिस्ट्री हॉल में, और जाओ वहाँ जाओ, अपने शरीर में प्रवेश करके कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आओ, क्योंकि कर्मातीत अवस्था अर्थात कर्मों से थोड़ा सा अतीत, न्यारे होके जब शरीर में तुम प्रवेश करोगी तो उसके बाद जो भी एक्टिविटी होगी वो कर्मातीत स्थिति की होगी। तो बाबा ने मम्मा को नीचे भेजा, मम्मा नीचे आई। ये सुना है जो मैं सुना रहा हूँ? नहीं सुना, इसीलिए मैंने कहा कि ये बात मैं सुनाता हूँ। तो मम्मा नीचे आई, काफी समय तक मम्मा नीचे रही, और उसके बाद मम्मा फिर ऊपर गई काफी समय के बाद। तो बाबा ने पूछा कि मम्मा करके आई कर्मातीत स्थिति का अनुभव? तो मामा ने कहा कि नहीं बाबा, मैंने तो नहीं किया। तो क्यों बच्ची, बाबा ने तो तुम्हें भेजा ही इसीलिए था, कर्मातीत स्थिति का अनुभव करो, तुमने नहीं किया। कि नहीं बाबा, मैं तो नहीं कर सकी। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत प्रयास किया उस शरीर में प्रवेश करने का, अपने शरीर में जो मैंने थोड़े समय पहले छोड़ा था, तो बहुत प्रयास किया लेकिन मैं प्रवेश ही नहीं कर सकी शरीर में, क्योंकि शरीर तो ठंडा पड़ गया था, शरीर में कोई चुरपुर नहीं हुई, और जो भी भक्ति मार्ग का गायन है कि आत्मा जब जाती है तो अगर आंखें खुली रह जाती हैं तो भक्ति में कहते हैं आंखों से चली गई आत्मा, मुंह खुला है तो मुंह से चली गई आदि आदि। तो मैंने बहुत तरीके से प्रयास किया कि मैं शरीर में प्रवेश कर सकूं, लेकिन शरीर तो ठंडा हो गया था, मैं प्रवेश नहीं कर सकी। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, चूंकि कर्मातीत अवस्था का तुमने अनुभव नहीं करा, तो अभी परम धाम तो जा नहीं सकते, क्योंकि परम धाम से जब आत्मा आती है पहली बार, चाहे सतयुग में आए, किसी जन्म में आए, त्रेता में आए, कभी भी आए, जब आत्मा पहली बार आती है उस समय आत्मा की हाईएस्ट स्टेज होती है, क्योंकि परम धाम में बैठी हुई है। परम धाम तो बहुत बहुत पवित्र स्थान है, तो वहाँ से जब आत्मा आती है तो वो आत्मा बहुत हाईएस्ट स्टेज में होती है, और उसके बाद जब यहाँ पार्ट बजाते बजाते बाबा का ज्ञान मिलता है, और जब आत्मा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त होती है, तो फिर जब तक उसी हाईएस्ट स्टेज को वो अनुभव नहीं करती, तब तक वो आत्मा जा नहीं सकती वहाँ, क्योंकि परम धाम की वो सीट उसकी बहुत पवित्रता में भी हाईएस्ट स्टेज है, तो इस कारण से वो वहाँ जा नहीं सकती। तो जाओ बच्ची, अभी परम धाम तो जा नहीं सकती तुम, अभी तुम जाओ नए शरीर में प्रवेश करो, माता के गर्भ में नया पार्ट बजाओ। देखो अभी तक भी मम्मा को भी कितने 61 ईयर हो गए ना, 61 साल जैसे हो गए पार्ट बजाते बजाते, जरूर अभी कर्मातीत होने में थोड़ी बहुत कमी होगी, तभी तो अभी गए नहीं मामा। तो इस कारण से बाबा ने कहा कि जाओ बच्ची पार्ट बजाओ, और जब तुम भी कर्मातीत हो जाओगी उसके बाद तो फिर सब बच्चे भी कर्मातीत हो जाएंगे। अब बाबा तो कर्मातीत है, वेट कर ही रहा है सूक्ष्म वतन में, इसलिए तब फिर परम धाम में सब इकट्ठे चलेंगे। तो अभी हर बच्चे को कहना, ये गौर से सुनने की बात है, अभी हर बच्चे को कहना कि कोई भी बच्चा अपने पार्ट से जो है ना कंटाले नहीं, ऐसे वो नहीं दुखी ना हो, भाई मेरे पास बीमार शरीर है, मैं सेवा नहीं कर सकता हूँ, मन मेरा बहुत चंचल है, हलचल में है, मन को पर मेरा नियंत्रण नहीं है, तन मन धन भी मेरे पास नहीं है, कई सब पे तो बराबर होता नहीं धन, तो धन पर भी नहीं है, इसीलिए तन मन धन संबंध संपर्क जो कुछ भी है जैसा भी है वो बेस्ट है, हर बच्चे का वो अच्छे में अच्छा है। बाबा ने ये जो शरीर दिया है संगम योगी, इससे और अच्छा शरीर नहीं मिल सकता था, इसीलिए कोई भी बच्चा ये संकल्प भी न करे कि मेरे परिवार वाले नहीं चलते हैं, या धन का अभाव है मेरे पास, या तन बहुत बीमार है, क्या करूं? नहीं, ये सब भी जो परिस्थितियां हैं ये इसलिए हैं कि आप स्वस्थिति को इतनी मजबूत कर लो कि इन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करके आप जब आएंगे तब तो फिर सब चलेंगे। तो इस तरीके से हमें वर्तमान समय, चाहे कोई भी परीक्षा है, परिस्थिति है, बहुत कटु में कटु परिस्थिति है, लेकिन हमें उससे घबराना नहीं है। बस बाबा हम आपके पास आए अपना इस शरीर का हिसाब किताब, क्योंकि अंतिम पेपर मेरा ये शरीर का ही है, बाकी सब पेपर तो आते रहेंगे अंत तक, लेकिन लास्ट में लास्ट पेपर तो ये शरीर ही है, क्योंकि आत्मा इस शरीर को छोड़ के जाएगी। और तो इस तरह मामा ये अपना अंतिम संदेश दे करके गए कि कभी भी हमें अपनी वर्तमान परिस्थितियों से कंटालना नहीं है, दुखी नहीं होना है, अशांत नहीं होना है। बस बाबा मुझे तो इस शरीर में ही कर्मातीत बनना है, आपको ही बनाना है बाबा। बस अब मैं सारे हिसाब किताब चुकतू करके आपके पास आई की आई, संकल्प ही ये रहे। तो ये मम्मा का अंतिम संदेश था, रिटर्न जर्नी का। मम्मा ने ना रिटर्न में तो अभी गए नहीं है, लेकिन उस मम्मा के शरीर से तो उनका पार्ट वो पूरा हुआ और नए शरीर में जाके उन्होंने पार्ट बजाया। अभी तो 60 साल की भी हो गई और बहुत सेवा कर रही होंगी। मामा ने संदेश भी दिया था कल शायद, जब नीचे शांति वन में भोग लगा था, कि बस मामा जो है वो पार्ट बहुत सेवा का बहुत बड़ा पार्ट बजा रही हैं, और अब पार्ट भी बहुत बहुत अंतिम स्टेज पर है। तो इस तरीके से हमें ये समझना चाहिए कि ये हमें जो भी पार्ट पूरा होगा, ये शरीर में मेरा अंतिम पार्ट है और ये मेरा लास्ट पेपर है, क्योंकि आत्मा जब छोड़ेगी, अब अलग अलग साल हर एक रहता है, कोई 25, 50, 60, 80, 90, 100 साल भी कोई रहता होगा इस शरीर में, अलग अलग रहते हैं। तो इस कारण से वो पार्ट को हम साक्षी हो करके देख करके बजाते चले। चलो अब रिटर्न जर्नी की और बात करनी है, क्यों? क्योंकि रिटर्न जर्नी तो हम सबकी है ही है, और रिटर्न जर्नी में बाबा ने जो जो बातें हमें संपन्नता की, संपूर्णता की बताई हैं, उन बातों को एक एक करके चेक करते हुए चलना है कि वास्तव में इन बातों में मैं कहाँ तक संपन्न बनता या बनती चली जा रही हूँ। एक तो बाबा ने यही कहा है कि योग के द्वारा 63 जन्मों के विकर्म भस्म करने हैं। वैसे तो पूरे 84 जन्म ही, लेकिन सतयुग त्रेता में तो विकर्म होते नहीं। हाँ, स्टेज थोड़ी थोड़ी कम जरूर होती है, लेकिन 63 जन्मों में तो विकर्म होते ही हैं। तो इस कारण से बाबा ने कहा कि वो विकर्म भस्म करने का एक ही तरीका है। कौन सा तरीका? अपने को आत्मा समझ के, वो तो है, उसमें भी महानतम स्टेज कौन सी है, जो बाबा ने कहा ज्वालामुखी स्टेज। हाँ, तो जब बिल्कुल ज्वाला होती है ना, ज्वाला में ही कोई चीज भस्म हो जाती है एकदम, तो जो इतने जन्मों के विकर्म है, तो ज्वालामुखी नाम भी सुना होगा आपने, क्यों पढ़ा। हाँ, हिमाचल प्रदेश में एक मंदिर है, वो ज्वाला जी का मंदिर बोलते हैं उसे, वहाँ पर ना प्रैक्टिकली ऐसा था कि पहले, अभी तो उतनी मूर्ति वो नहीं है, एक मूर्ति थी उसके मुंह से ज्वाला निकलती रहती थी, तो इसीलिए ज्वालामुखी, मुख से ज्वाला उस देवी के निकलती रहती थी। बहुत से पूछा गया सबसे कि भाई कब से निकल रही है, कि मालूम नहीं भाई, मेरे दादाजी, उनके दादाजी, वो भी कहते थे हमारे से भी पहले से टाइम से ये ज्वाला लगातार निकलती है, एक सेकंड को भी बुझी नहीं है। तो वो ज्वालामुखी स्टेज रहे, और ज्वालामुखी स्टेज का मतलब क्या है कि निरंतरता, कंटिन्यूटी। अगर निरंतरता रहती है तो एक सेकंड के लिए भी अगर कोई, मानो किचन में भी माताएं जानती हैं गैस है, गैस अगर एक बार बुझ गई फिर जलाने के लिए भले ऑन करेंगे लेकिन अपने आप जलेगी नहीं, दोबारा जलानी पड़ेगी। तो इस तरीके से जलाने के लिए भी निरंतरता चाहिए, तो बाबा भी वो चाहता है निरंतरता, कंटिन्यूअसली। अब निरंतरता का मतलब क्या, एकदम 24 घंटे, बाबा ने एक बार बताया था बच्चे कार्य करते वक्त 8 घंटे भी अगर बाबा की याद रहे वो भी निरंतरता है, लगातार। तो निरंतरता का मतलब ये है, बस बाबा की याद कैसे, 8 घंटा काम करेंगे, सेवा करेंगे, थोड़ी बहुत बुद्धि तो वहां जाएगी। तो बाबा ने कहा कि बाबा का भाव यह है कि निगेटिविटी कोई ना है, बस पॉजिटिव संस्कार रहे, हर एक के प्रति ही पॉजिटिविटी रहे, वो ही निरंतरता है। तो इसीलिए ये देखना है हमें कि कोई भी आत्मा के, परिस्थिति के, कोई भी साधन के, किसी के प्रति भी निगेटिविटी ना हो। तो वो लगातार अगर होगी ना, तो वो जैसे कि एक ज्वालामुखी की तरफ बढ़ने का अंतिम लक्ष्य है। और जब हमारी आत्मा इस शरीर से निकलेगी तो वो कुछ समय के लिए हमें एकदम निरंतरता का अनुभव होगा, और वो निरंतरता हमारी इतनी होनी चाहिए कि बस जब ये निरंतरता होगी तो कोई और अंत समय याद नहीं रहेगा। वही बाबा ने कहा है कि अंतिम कर्मातीत अवस्था है, कोई व्यक्ति, वस्तु, वैभव, धन, दौलत, पोता, पोती, बच्चे, कोई भी याद ना रहे, वो हमारी कर्मातीत अवस्था की निशानी है। तो इसीलिए एक तो हमें इस रीति से अंतिम समय के हिसाब से इस निरंतरता का अभ्यास करना है, और वो भी कब होगा, हाँ वो भी तब होगा जब हम थोड़ा साक्षी दृष्टा हो करके हर परिस्थिति को, हर व्यक्ति को, हर चीज को देखेंगे साक्षी हो करके। हम साक्षी नहीं होते, सड़क पर भी जा रहे हैं, कोई का एक्सीडेंट हुआ, देखा बस चले जाते हैं, लेकिन अगर हमारा कोई नियर एंड डियर होता है, उसका कोई एक्सीडेंट होता है तो हम उसमें जैसे मानसिक रीति से इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसीलिए अभी बाबा कहता है कि साक्षी हो करके देखो, साक्षी दृष्टा, इसीलिए साक्षी को दृष्टा कहा है, क्योंकि बाबा वैसे भी बोलता है ये दृष्टि जो है ना, ये दृष्टि जो है ये ही वास्तव में सब चीज की जड़ है, क्योंकि दृष्टि जितनी सतो प्रधान होगी और पवित्र होगी उतना ही आत्मा की स्थिति भी सतोगुणी सतो प्रधान होती जाएगी, और अंत में उस अवस्था में जब आत्मा शरीर छोड़ेगी तो संपूर्णता की वही अवस्था है। तो इसीलिए दृष्टा देखो, दृष्टि ये है, आंख ये दृष्टि है, और दृष्टा कौन है? आत्मा। तो आत्मा दृष्टा है और ये आंख दृष्टि है, तो ये दृष्टा साक्षी दृष्टा देखने वाली आत्मा है, इसलिए साक्षी दृष्टा कहा गया है। तो एक है दृष्टा, दूसरी है दृष्टि, तीसरी क्या चीज है? दृष्टा और दृष्टि, और तीसरी चीज है दृष्टांत। जो भी दृश्य हम देख रहे हैं वो दृष्टांत है, वो दृश्य है। तीसरी चीज है दृश्य, दृश्य देख रहे हैं, दृष्टा इस दृष्टि के द्वारा ये दृश्य देख रहा है जो संसार में दृश्य है। तो इस दृष्टि को, इस दृश्य को हम बिल्कुल साक्षी होकर देखें। मैं दृष्टा जैसे दृष्टि के द्वारा ये दृश्य देख रही हूं, ये साक्षी दृष्टा होने का एक मेथोडोलॉजी है। किस तरह हम साक्षी दृष्टा धीरे धीरे संपूर्ण रीति से बन सकते हैं जो बाबा चाहता है। तो दृश्य को हम साक्षी हो करके देखें। फिर और क्या है? दृश्य जब देखते हैं, दृश्य में क्या होता है, हम दृश्य में अटक नहीं जाते, कार में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, दृश्य गुजरते जा रहे हैं, अच्छा है बुरा है, दृश्य चलता जा रहा है, पीछे हम इधर की तरफ चलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो दृश्य जो है ना वो हमें रोक नहीं लेता, तो हम जीवन के किसी भी दृश्य में रुक न जाए। क्या होता है, कभी कोई ऐसी घटना हो गई जिसने जीवन में बहुत बहुत प्रभाव डाल दिया, किसी की डेथ हो गई, हमारे नियर एंड डियर की शरीर छोड़ दिया, कोई बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया, तो उससे क्या होता है कि उसने प्रभाव डाल दिया और हम उसी पर सोचते रहेंगे, उस दृश्य से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, भूल नहीं पाते हैं, नहीं। तो इसीलिए बाबा ने कहा दृष्टा, दृष्टि और दृश्य। चौथी चीज है दृष्टिकोण, जैसा हमारा एंगल होता है देखने का दृष्टिकोण, वैसा ही हम किसी चीज को देखते हैं। हमारा दृष्टिकोण अगर पॉजिटिव है तो कोई भी चीज होगी हम उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे, वो चीज में हमें कल्याण ही नजर आएगा। जो बाबा कहता है हर चीज में कोई ना कोई कल्याण है, तो हमारा दृष्टिकोण जीवन के प्रति पॉजिटिव होना चाहिए। तो चौथी चीज है ये दृष्टिकोण। और जब इतिहास लिखा जाता है ना, तो जब दृष्टांत लिखे जाएंगे तो वो दृष्टांत जब भक्ति मार्ग में हम लोगों के लिखे जाएंगे तो वो दृष्टांत भी इसी चीजों पर आधारित होंगे कि मेरा दृष्टिकोण कैसा है, मेरा दृष्टि कैसी है, दृश्यों को मैंने कैसे हैंडल किया, और वो ही चीज हमें संपूर्णता की ओर ले जाती है। तो इसीलिए इन पांच बातों की तरफ हमारा सदा अटेंशन रहे, दृष्टा, दृष्टि, दृश्य, दृष्टिकोण और दृष्टांत। इन पर जैसे ही हमारा अटेंशन रहेगा तो हमारा सदैव जो हमारी रिटर्न जर्नी होगी ना, जो बाबा ने बताया, तो वो रिटर्न जर्नी बहुत बहुत एक्यूरेट। आज की मुरली भी देखा जाए तो काफी कुछ रिटर्न जर्नी के ऊपर ही थी। हाँ, क्या थी रिटर्न जर्नी के ऊपर? जैसे कभी भी जर्नी पर जाते हैं ना, किसी शुभ कार्य के लिए जाते हैं तो तिलक देते हैं, देते हैं ना घर वाले भी, कि भाई परीक्षा देने जा रहे हैं या तीर्थ करने जा रहे हैं या कोई भी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, तिलक देके विदा करते हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ पर जैसा हमारा संगम पर आत्मस्मृति का तिलक होगा, वैसा ही तिलक फिर सतयुग में उतना महान तिलक राजाई का तिलक होगा। तो यहाँ आत्मस्मृति का तिलक हमारा बहुत बहुत महानता का होना चाहिए। तो ये तिलक जो है ना, ये तिलक है, कोई भी जर्नी शुरू करते हैं तो अब जब फॉरवर्ड जर्नी थी, परम धाम से जब आए थे तब तो हमें मालूम ही नहीं था कि हम जर्नी पर जा रहे हैं, जर्नी की बात ही नहीं थी, आगे का कुछ मालूम नहीं। लेकिन अब जब मालूम है कि हम फिर रिटर्न जर्नी पर जा रहे हैं, तो रिटर्न जर्नी की हमें पूरी की पूरी ऐसी तैयारी करनी है कि रिटर्न जर्नी हमारी बहुत बहुत जैसा हम चाहते हैं वैसी सफल हो। हम सभी जाते हैं हमारा, हम संपूर्ण हो के जाए, परम धाम में जाए, हमारी ये रिटर्न जर्नी हो। लौकिक में भी अभी आपने दो एक दिन बाद जब भी आपकी रिटर्न जर्नी होगी तो उसके लिए क्या तैयारी की है? टिकट तो बुक कराई हुई है ना। तो बस पहली बात यही है कि जब हम जानते हैं कि ये रिटर्न जर्नी है, हमें जाना ही है, उसमें तो जर्नी में तो डेट मालूम होती है, यहाँ डेट टाइम का वो एग्जैक्ट वो मालूम नहीं है, लेकिन क्या मालूम है? रिटर्न जर्नी में हमें जाना है, और इसीलिए रिजर्वेशन कंफर्टेबल जर्नी के हिसाब से किया जाता है। तो रिटर्न जर्नी के लिए एक तो टिकट का पक्का होता है, टिकट का भी मालूम है, हमें चाहे न मालूम हो, ड्रामा को तो मालूम है, बाबा को भी मालूम है, और जब जाएंगे हम ना रिटर्न जर्नी में, तो रिटर्न जर्नी के लिए हमें पूरा ये तैयारी करनी है जो बाबा ने कहा है, जो आजकल लास्ट में जो क्या आता है, अव्यक्त इशारा। तो अव्यक्त इशारा में आजकल कौन सा चीज आ रही है? सरलता, सहनशीलता, और इसके साथ साथ हर्षित मुक्तता अपने आप आ जाती है। तो जर्नी में भी जितनी सरलता होती है, आप गए, आपकी सीट रिजर्व है, अगर उसमें कोई पहले से ही बैठा है तो जितना प्रेम से बोलेंगे भाई ये हमारा है, सरलता से, उतना दूसरा भी सरलता से रिस्पॉन्ड करेगा। और अगर हमने अपने अधिकार से नहीं नहीं उठो, ये मेरी सीट है, तुम्हारा कोई नहीं, तो फिर झगड़ा होने की संभावना है। तो जीवन में हमारी रिटर्न जर्नी में सरलता बहुत बहुत आवश्यक है। सरलता का मतलब क्या है? अंदर बाहर एक, वो सरलता का मतलब है। कई बार हम अंदर एक होते हैं, बाहर दूसरे होते हैं, देखने में दूसरे, लेकिन नहीं, अंदर बाहर एक, वो है सरलता। और जितनी सरलता होगी उतना उतना जीवन में सफलता भी होती जाएगी, और स्वाभाविक रीति से हमारे अंदर सरलता होगी तो सहनशीलता भी, जो बाबा ने कहा, ऑटोमेटिकली आत्मा के अंदर स्वाभाविक रीति से सहनशीलता भी होती जाएगी। तो जर्नी में, लौकिक जर्नी से आप तुलना करो, हो टिकट भी आपका है, आपका रिटर्न टिकट, भले हमें ये नहीं मालूम एग्जैक्ट कौन सा है, लेकिन हम सभी उस रिटर्न जर्नी के लिए तैयारी कर रहे हैं जो रिटर्न जर्नी हमारी होने वाली है। और साथ में जर्नी में, रिटर्न जर्नी में क्या करते हैं? पैकिंग वगैरह करके सारा समेटने का काम। तो अभी बाबा हमें बोल रहा है समेटते जाओ। बहुत फैलाव कर लिया, बच्चे, पोते, पोतरियां, धन, मकान, बिल्डिंग, कार, मोटर, फ्रिज, सब बहुत फैलाव हो गया। आवश्यक भी है, इसीलिए बाबा ने कहा विस्तार भी सेवा का करो, लेकिन सेवा के विस्तार के साथ साथ ट्रस्टी भी हो करके रहो। तो इसीलिए अभी सेवा तो जो होनी थी हो रही है, होती भी रहेगी, बढ़ती भी रहेगी, लेकिन उस सेवा के साथ साथ क्या होना है? सेवा के साथ साथ हम जो है ना, उससे अलिप्त रहे। सेवा हो लेकिन वो हमें बार बार अपनी तरफ खींचे नहीं। अगर सेवा खींचती है ना, तो इसका मतलब मेरा लगाव झुकाव उधर है। और भारतीय संस्कृति में हमेशा ये बोला जाता है कि आत्मा शरीर को क्यों नहीं छोड़ पाती, क्योंकि जहां जहां उसका लगाव झुकाव व्यक्ति में, धन दौलत में, वस्तु में, परिवार में, जहां भी लगाव झुकाव है, वो लगाव झुकाव अपनी तरफ खींचेगा, तो आत्मा चाहते हुए भी शरीर नहीं छोड़ पाएगी। इसीलिए अंत समय आत्मा का शरीर के साथ कोई ममत न हो, और शरीर का आत्मा के साथ, बस दोनों। शरीर आसानी से आत्मा को नहीं छोड़ता, इतने 50, 60, 80, 90 जितने साल रहा क्यों छोड़ेगा वो? इतने एक एक सेकंड, 24 घंटा पूरा इस आत्मा को पकड़ करके वो बैठा है, और आत्मा शरीर को पकड़ के बैठी है, तो कैसे छोड़ सकता है? तो इसीलिए ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि कहीं पर भी लगाव झुकाव ना हो। हाँ, एक बार बाबा से किसी बहन ने पूछा, हाँ, कि बाबा आप कहते हो बैलेंस, हाँ, लव एंड लॉ का बैलेंस, बहुत चीजों का बैलेंस है जैसे, तो लव एंड लॉ का बैलेंस हो तो बड़ा मुश्किल होता है। लॉ का बैलेंस, लॉ रखते हैं, अनुशासन की बात किसी भाई बहन को बताओ तो स्नेह नहीं रहता, लव की बात नहीं रहती। अगर लव की बात स्नेह पूर्ण बताओ तो अनुशासनहीनता में व्यक्ति चला जाता है। तो बाबा ने कहा वो शुरू शुरू में बात थी लव एंड लॉ का बैलेंस, अभी क्या है? लव इज लॉ, लव इज लॉ। हर एक से प्रेम हो। प्रेम का मतलब क्या हुआ? कि सबके साथ समान भाव से प्रेम, किसी से ज्यादा प्रेम और किसी से कम प्रेम, ऐसा नहीं। कबीरदास जी भी होके गए ना, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से प्रेम। तो वैर भी ना हो, दोस्ती भी ना हो, लेकिन मेन चीज क्या है कि ये प्रेम जो है ना, क्यों आवश्यक है, क्योंकि सतयुग में वही संस्कार प्रेडोमिनेंट रहेगा, मुख्य संस्कार वही होगा सबका, आत्माओं के प्रति, प्रकृति के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति, साधनों के प्रति, हरेक से समान भाव से प्रेम होगा। इसीलिए ये आवश्यक है देखना कि ये प्रेम जो है ना, किसी के प्रति ज्यादा, किसी के प्रति कम प्रेम ना हो। जहां कम प्रेम होगा, अब सतयुग में तो ऐसा होगा नहीं, तो इसीलिए अक्सर करके यहां पर जब ऐसा हो जाता है, जब हम ज्ञान में चलते रहते हैं काफी समय तक, जब शुरू में एकदम ज्ञान में आते हैं, बहुत हमारा दैवी परिवार से प्यार होता है। क्यों? क्योंकि दुनिया की भेंट में वो स्वार्थी प्रेम होता है, और दुनिया की प्रेम में तो यहाँ पर हमें हर व्यक्ति देवता नजर आता है, सबसे बहुत अथाह प्रेम हो जाता है। लेकिन जब ज्ञान में चलते रहते हैं चलते चलते फिर किसी किसी की कमियों का भी आभास होना, क्योंकि संपूर्ण तो कोई बना नहीं, सभी पुरुषार्थी हैं, तो इसीलिए किसी किसी की कमियों का जब आभास हो जाता है, तो वो हमारे व्यवहार से, बातचीत से, हमारे नैन चैन से वो प्रकट होने लगती है। और ज्यादा समय तक अगर वो चलती है तो क्या होता है, बोलचाल भी बंद हो जाती है, कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो जाता है। सामने से आ भी रहे होंगे, अगर मेरा आपसे अच्छा व्यवहार नहीं है तो आप उधर से निकल जाएंगे, मैं इधर से निकल जाऊंगा, ओम शांति भी नहीं होगी, गुड मॉर्निंग भी नहीं होगी, ऐसा होता है। लेकिन ये संस्कार लेके सतयुग में तो जा नहीं सकते, सतयुग में तो सबसे बहुत समान भाव से, प्रेम भाव से होगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ हमारा अहम जो है बातचीत नहीं करने देता, मैं सोचता हूँ पहले वो बात करे, वो सोचता है पहले ये बात करें, ये मेरे पास आए, मैं कोई गलती पर थोड़ी था, ये गलती पर थे, क्योंकि दूसरा ही गलती पर नजर आता है, अपनी गलती तो पता नहीं चलती। तो कोई भी हालत में हमें इस परिस्थिति को तोड़ना है, खत्म करना है। किसी से हमारा बोलचाल कम है, नहीं है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, गलतफहमी के कारण बोलचाल कम हो गई है, कोई ऐसी बात हो गई है, हम अपने अहंकार को दबाएं, खत्म करें और उस व्यक्ति के पास जाएं, बहन जी या भाई जी, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे और आपके बीच में पहले जितना स्नेह था अभी उतना नहीं लगता है, और जरूर कहीं ना कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई कम्युनिकेशन गैप है, आपस में बातचीत नहीं हो पा रही है, इसीलिए आइए 5-10 मिनट बैठ जाएं और बैठ के उस बात को हम दूर करें। अपना अहंकार दबा कर भी बात करें, ये बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये संस्कार लेके तो जा नहीं सकते, और उसकी रिजल्ट क्या होगी कि सतयुग में हम एक साधारण सा पद पा लेंगे, और थोड़ा ऊंच ऊंच पद होते होते कलयुग के अंत तक कोई ऊंच पद मिल जाएगा, जबकि होगा तो कलयुग ही, उस दुख की दुनिया में थोड़ा ऊंच पद भी हो गया तो क्या फायदा, सतयुगी दुनिया में तो साधारण ही पद रहा। तो कितनी बड़ी कॉस्ट हमने दी, कितनी बड़ी कीमत हमें अदा करनी पड़ी, इसीलिए आवश्यक ये है आप एक बार मिलो वो राजी ना हो, दूसरी बार मिलो, तीसरी बार बहन जी भाई जी हम थोड़ा बैठते हैं, और इस तरीके से आप देखोगे कि अवश्य ही आपस में बैठ के कोई छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, उसकी वजह से किसी ने किसी की गलत शिकायत कर दी होगी, किसी ने कुछ भी, इस कारण से वो बात होगी, वो खत्म हो जाएगी और फिर से हमारे संबंधों में मधुरता आ जाएगी। सदा के लिए आपको अंदर से इतनी खुशी होगी कि बस अब देखो हमारा किसी से भी वैर भाव नहीं है। और जब रिटर्न जर्नी में जाएंगे ना, हर आत्मा, नहीं तो होता क्या है, कहते हैं भारतीय संस्कृति में भी लिखा है और विश्व के सभी धर्मों में कुछ न कुछ लिखा है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है ना, तो या तो उसे वो याद आता है जिससे अति प्रेम भाव हो, या वो याद आता है जिससे कुछ कटुता हो। तो इसीलिए उसका कितना बड़ा नुकसान हमें हो गया। तो इसीलिए हर हालत में प्रेम भाव तो हमारे हाथ में है, प्रेम से करें। कटुता में अगर दूसरा तैयार ही नहीं होगा बात करने को, वो कटुता को दूर कैसे करेंगे। इसलिए अपने अहम भाव को तोड़ करके, अहंकार को तोड़ करके एक बार मिलें, दो बार मिलें, तीन बार, ऐसा होना चाहिए। और ये सारा खेल है ही मन का खेल है। एक बार एक व्यक्ति राजा के पास आया और वहाँ आके उसने, राजा ने कहा वहाँ पर कि व्यक्ति आया और राजा उसके पास जाके पूछता है किसी बात के अंदर कि महाराज ये जो है ना मस्तिष्क दिमाग ये जो है कोई भी बात मन जो है मन के अंदर कोई भी बात रह क्यों जाती है, किसी भी बात को हम एकदम किसी को लेट गो भी नहीं कर पाते हैं कई बार, और मन बहुत बहुत सूक्ष्म है। तो भिक्षा पात्र लेकर के एक व्यक्ति आया था राजा के पास कि राजन मुझे इसमें भिक्षा दे दो। तो राजा ने मंत्री को बोला जाओ वहां से राजकोष से धन निकाल के इसके इसमें डाल दो। मंत्री गया डाल दिया, भरा ही नहीं वो। दूसरी बार गया फिर भी नहीं भरा, तीसरी बार चौथी बार था तो छोटा सा भिक्षा पात्र लेकिन भर नहीं रहा था। तो राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा महाराज जरूर इसमें कोई बात है कि ये भर क्यों नहीं रहा है। तो उसने कहा हाँ महाराज इसमें एक गुह्य रहस्य है, ये भिक्षा पात्र जो है ना ये मनुष्य की खोपड़ी का बना है, और यहाँ व्यक्ति का मन होता है, आत्मा होती है और उसकी अनेक अनेक इच्छाएं होती हैं, और इस कारण से एक इच्छा पूरी होती है तो दो और इच्छाओं का जन्म होता है, दो पूरी होती हैं तो चार और इच्छाओं का जन्म। तो इसीलिए ये पात्र भर नहीं रहा है। बस अब हमें भी अपने मन को देखना है कि मेरा मन भी इसी परिस्थिति में से तो पास नहीं हो रहा है, कि मन के अंदर एक के बाद दूसरी इच्छा, दूसरी के बाद तीसरी, अनेक अनेक इच्छाओं का जन्म हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। ये बहुत आवश्यक है इस बात को देखना कि मन के अंदर ना इच्छाओं के ऊपर हमारा नियंत्रण रहे। जब हमारी रिटर्न जर्नी होगी ना, कोई भी इच्छा हो, कोई इच्छा का मतलब कोई खराब इच्छा ही नहीं, कोई भी अतिरिक्त इच्छा, हाँ इसीलिए ये कहा गया है हैप्पीनेस, खुशी। खुशी का फार्मूला वैज्ञानिकों ने क्या बनाया है, हैप्पीनेस इज इक्वल टू अचीवमेंट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेशन। अर्थात खुशी का फार्मूला ये है, प्राप्तियां अचीवमेंट्स और नीचे की तरफ एक्सपेक्टेशन यानी कि इच्छाएं आशाएं जो मनुष्य की होती है। तो ये जो है जितनी जितनी अचीवमेंट्स होती रहेंगी, प्राप्तियां होती रहेंगी, मेरी इच्छा है बच्चे का एडमिशन इंजीनियरिंग में हो जाए, मेडिकल में हो जाए, हो गया मुझे खुशी हुई। लेकिन नीचे अगर एक्सपेक्टेशन है, आशाएं, और वो आशाएं जितनी ज्यादा होंगी तो हैप्पीनेस कितनी होगी, कम होगी, क्योंकि वो नीचे डिनोमिनेटर में है, नीचे वो है। तो इसीलिए अपनी इच्छाओं के ऊपर धीरे धीरे हमें नियंत्रण करते चलना है। जब हमारी रिटर्न जर्नी है ना, तो देखते चलना है, कोई भी इच्छा हो, इच्छा तो होगा, संकल्प पैदा होना मन का कार्य है, कार्य ही है संकल्प पैदा करना। लेकिन इसमें ये देखना है कि मन के अंदर जो संकल्प हो ना, उन पर हमारा नियंत्रण हो, न कि संकल्प का मेरे ऊपर नियंत्रण। संकल्पों पर हमारा नियंत्रण होगा तो बस, मानो मेरे मन में संकल्प आया, मेरे पास स्कूटर है, मेरे पड़ोसी के पास कार है, मेरे मन में संकल्प आया कि भाई मेरे पास भी कार हो तो अच्छा है, और वो, लेकिन ये तो संकल्प आया, ये संकल्प का मेरे ऊपर वार हुआ। लेकिन मुझे ये देखना है कि संकल्प के ऊपर ना मेरे मन का नियंत्रण क्या हो, कि अरे भाई स्कूटर से काम तो चल रहा है, बहुत अच्छा है, कल ये होगा, परसों और आगे की इच्छा होगी, उससे हाई मॉडल की कार हो, उससे और आगे होगा हेलीकॉप्टर हो। तो अपने मन को तुरंत ही आपको अपनी शुभ भावना, शुभ कामना, पॉजिटिविटी से मन को नियंत्रण में करना है। तो इसीलिए ये जितना जितना, क्योंकि सारा खेल ही मन का है, और हमारा अंतिम पेपर ही कौन सा है, शरीर का तो है ही, लेकिन चारों तरफ अति हलचल होगी, बहुत हलचल। एक तरफ अभी तो पांच तत्वों का भारत में बाबा ने बताया ही है कि भारत में एटॉमिक वेपन का ज्यादा उतना असर नहीं होगा, सिविल वार का ज्यादा असर होगा, खूनी नाहक खेल होगा, और मुख्य तो ये पांच तत्वों का, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, इनके द्वारा विनाश होगा। तो जब इनके द्वारा अति विनाश हो, हलचल होगी, एक तरफ पृथ्वी हिलेगी बहुत अति हलचल में, दूसरी तरफ अति वृष्टि होगी, तीसरी तरफ अनावृष्टि होगी, गर्मी होगी, बहुत सूखा होगा, चौथी तरफ कहीं बादल फटेगा आकाश में, एकदम सडनली एकाएक ही बस लाखों गुना पानी आ जाएगा, बहुत ये सब जो होगा। एक तरफ जो नदी और समुद्र के किनारे बसे हुए शहर हैं, वायु की हलचल होगी, साइक्लोन तूफान वो इतने ज्यादा आएंगे कि बस, तो जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश सबकी अति हलचल होगी, और इसका फाइनल पेपर में पास होने का एक ही तरीका है, कौन सा, अति अचल स्थिति। बाहर अति हलचल होगी लेकिन हम अंदर में अति अचल। कैसे होंगे अति अचल, जब दिख रहा है हलचल हो रहा है, फलाना मर रहा है, ये विनाश हो रहा है, ये हड्डी टूट रही है, ये दुख हो रहा है, अति अचल स्थिति कैसे होगी? जब हमें अंदर में जाने का अभ्यास होगा। वो तो कथा आपने सुनी है ना, एक व्यक्ति थोड़ा अशांत था तो गुरु जी के पास गया, चलो मैं सत्संग में जाता हूँ, और सत्संग में बैठा, बड़ा शांति का अनुभव होने लगा उसे, सभी चेलों को हो रहा था शांति। इतनी देर में भूचाल आया, चारों तरफ बिल्डिंगें गिरने लगी और वो भी हिलने लगा जहाँ गुरु जी सत्संग कर रहे थे। तो वहां पर जब ऐसी स्थिति हो गई, सारे चेले उठ के भागे, गुरु जी को बोला, गुरु जी आप भी आओ 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 भागो आओ आओ, गुरु जी नहीं आए, वहीं बैठे रहे। बहुत चेलों ने कहा कि गुरु जी ये गिरने वाला है, बहुत हिल रहा है छपरा, तो गुरु जी नहीं आए। थोड़ी देर बाद भूचाल शांत हो गया। अब भूचाल शांत के बाद सब चेले भी लौट के आए और उन्होंने कहा, गुरुजी हमने आपको इतना बुलाया, आप नहीं आया, अगर ये गिर जाता तो आपको तो बहुत नुकसान हो जाता, कुछ भी। तो क्या कहा गुरुजी ने? गुरुजी ने कहा कि मैं भी तो तुम्हारे साथ भागा था, तुमने देखा नहीं? क्यों नहीं गुरुजी, आप तो यहीं की यहीं बैठे हुए थे। नहीं नहीं मैं भी भागा था, फर्क ये था कि तुम बाहर भागे, मैं अंदर भागा, अंदर की तरफ। बस अब ये हमारा अभ्यास होना चाहिए, अंदर भागने का अभ्यास। बाहर भागने का तो अभ्यास बहुत हो रहा है, तो रिटर्न जर्नी के लिए ये चौथी पांचवी बात खास है कि अंदर भागने का जितना अभ्यास होगा ना हमें, उतनी हमारी अचल स्थिति होगी, उतना ही हम हर परिस्थिति में विजय प्राप्त करते रहेंगे, हलचल में नहीं आएंगे। इसीलिए इन सब बातों का अभ्यास करते रहें रिटर्न जर्नी में। तो रिटर्न जर्नी का तो हर एक को अभ्यास है आप लोगों ने, तो हर लौकिक बात को अलौकिक बात से कंपेयर करते जाओ तो आपको एकदम पता चलेगा कि हाँ ये हो गया, ये अभी बाकी है। जो बाकी है उसको फिर और अपने हल में लेने का प्रयास कर। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। भाई जी का बहुत 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 अभिवादन है, आभार है, कैसे रिटर्न जर्नी हमको बताई। पहले दीदी ने समझाया मम्मा के बारे में, और आज भाई जी ने बाबा के बातों को लेके, मम्मा की बातों को लेके रिटर्न जर्नी की शेयर करा दी। वो भी कराई ना, तो देखो दोनों आदि रतन आपको मिले, आप कितने भाग्यवान हो। ये जब प्रोग्राम बना तो हमने 23 तारीख तक प्रोग्राम नहीं बनाया था, हम सोच रहे थे कि इसमें ऐसे आदि रत्नों का क्लास मिले आप सबको, ताकि आप कुछ अंदर भर के लेके जाओ। तो भाई जी को फिर से एक हाथ की ताली से अभिवादन करें। भाई जी बहुत 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 थैंक्स। भाई जी बहुत बहुत थैंक्स।